आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में खाद वितरण को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा खाद में मिलावट और काला बाजारी करने वालों पर लगेगा एनएसए। लोकसभा में पेश हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, 20 साल पुराने मनरेगा अधिनियम का लेगा स्थान। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, 28 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन। और घने कोहरे की वजह से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटाई गई वाहनों की अधिकतम गति सीमा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में मिलावटी या नकली खाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अन्नदाता किसान को खाद को लेकर कोई समस्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश कल लखनऊ में कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिया। श्री योगी ने कहा कि कृषि और सहकारिता मंत्री प्रतिदिन खाद की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले की सीधी निगरानी की जाएगी और खाद के वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। श्री योगी ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना ना पड़े। एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने से जुड़े कार्यों की समीक्षा के साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागों को आवंटित कुल बजट के सापेक्ष खर्च की समीक्षा की। उन्होंने बजट के मुकाबले खर्च की धीमी गति पर असंतोष जताया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य जनता के हित को ध्यान में रखते हुए विभागों के कामकाज को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा करना है।
उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आप देखेंगे कि सभी विभागों के बारे में हम और तेजी के साथ कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, जनता के हित और जनता के आकांक्षा के अनुरूप उस दिशा में हम सब चर्चा करने वाले हैं। और प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर एक के विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारी GDP में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश पूरे राष्ट्र के पैमाने पर चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लाइन ऑर्डर हो, औद्योगिक निवेश के मामले में भी प्रथम डेस्टिनेशन औद्योगिक घरानों के लिए साबित हो रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। ये विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। एक रिपोर्ट।
इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। वही नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस नए विधेयक के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 संस्थागत स्वायत्तता, मान्यता तथा गुणवत्ता को मजबूती देगा तथा शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। ये विधेयक भविष्य के लिए मजबूत उच्च शिक्षा ढांचा तैयार करने में सहायक होगा। नई दिल्ली में श्री प्रधान ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है।
जब हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू किया तब उसमें से एक अश्योरेंस था कि अभी की जो यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की विभिन्न प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कई प्रकार की स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने वाला बॉडी कहे या कोई भी इंस्टीट्यूट की, ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसकी रेगुलेशंस, उसकी स्टैंडर्ड एंड उसकी एक्रेडिटेशन। ये तीनों की भारत की आज के दिनों में लगभग 60,000 विभिन्न प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ये भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2025 के अंकों के आधार पर की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे। 28 जनवरी तक आवेदन और शुल्क जमा किए जा सकेंगे। आवेदन पत्रों में संशोधन और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए PET 2025 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। PET स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतिम चयन किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती को कल अयोध्या में सरयू में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल समाधि दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या स्थित हिंदू धाम आश्रम पहुंचकर ब्रह्मलीन महंत डॉ. रामविलास वेदांती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वेदांती जी महाराज का संपूर्ण जीवन भगवान राम को समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने उनके शिष्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वेदांती जी के आदर्श और उनका राम भक्त जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।
वेदांती जी महाराज 1983 से लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े थे और भगवान राम के इस पवित्र मंदिर के अभियान के उस हर एक कार्यक्रम के साक्षी वेदांती जी थे। जो उनकी इच्छा थी उसके अनुरूप उनका पूरा जीवन समर्पित था। रामलला का भव्य मंदिर, रामलला का विराजमान और भव्य और दिव्य अयोध्या को अपनी आंखों से देखते हुए उन्होंने अपनी नश्वर काया को छोड़ी है। उन्हें प्रभु श्री राम अपने से चरणों में स्थान दें और उनके प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं।
काशी तमिल संगमम के अंतर्गत कल पर्यटकों का आखिरी दल प्रयागराज पहुंचा। इस दल में करीब 216 धर्मगुरु और 50 तमिल सिखाने वाले शिक्षक शामिल थे। संगम में स्नान के साथ दर्शन पूजन के बाद सदस्यों ने इस कार्यक्रम को एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
काशी तमिल संगम में हम यहाँ त्रिवेणी संगम पर खड़े हैं। ये हमारे लिए एक पुण्य यात्रा बना रही थी। हमारे साउथ इंडियन में होने वाले जैसे मदुरई में छुक्कनादर है, रामेश्वर में रामनाथ जी है, वैसे बड़ा बड़ा मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसी भगवान को यहाँ हम काशी में विश्वनाथ की ओर हम देखकर हमें बहुत संतोष हुई।
लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
बीते कुछ दिनों में तराई वाले जिलों के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 15 फरवरी तक जिले से गुजरने वाले प्रमुख एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और NH9 पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटा दी गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और हल्के वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। समाचार कक्ष से अरुण।
उधर कई जिलों में स्कूलों के समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में खाद वितरण को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा खाद में मिलावट और काला बाजारी करने वालों पर लगेगा NSA। लोकसभा में पेश हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, 20 साल पुराने मनरेगा अधिनियम का लेगा स्थान। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन। 28 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन और घने कोहरे की वजह से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटाई गई वाहनों की अधिकतम गति सीमा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।